निशांत नारी परिधान धून नन स्फुटा गमसाप्य ऋषु लोड़ चक्षुषा प्रियेण तस्यान पराध बाधिता प्रकंपेन नानु च कंपीरे सुरा। श्लोक संख्या 61 अन्वय। निशांत नारी परिधान धून स्फुटागसा अपि उरुसु लोलो चक्षुषा तस्य प्रियेण प्रकंपेन अपराध बाधिता सुरा अनुच कंपीरे। समास लोले चक्षुषी यस्य सा लोल चक्षु तस्य लोल चक्षुषा अनपराधे बाधिता अनपराध बाधिता। वैयाकरण धूननम धियो अनंतात ल्युट धुई प्रयोंग नुगवक्त कत्वह इति वार्तिकेन नुक प्रकंपनेन प्रधन कंपी धनल्युट अनुचंकंपिरे अनुधन कंपी धनल्युट झा इरेच। हिंदी अनुवाद। अंतपुर के नारियों की साड़ियों को उड़ाने के कारण स्पष्ट अपराध वाले जंघाओं पर संतिष्ट दृष्टि वाले रावण के कृपा पात्र वायु ने बिना अपराध के ही पीड़ित देवों पर अनुकंपा कराई। तिरस्कृतस्य जनाभिभाविना मुहुर्मु महिमाना महसा महियसाम बभार बाष्पी द्विगुणी कृतम तनु तनुस्तनुनु पादधूम वितान माधी जयी। श्लोक संख्या 62 अन्वय। तस्य जनाभिभाविना महसाम महिमना मुहु तिरस्कृतम तनु तनुपात आधिजयी वाष्पी द्विगुणी कृतम धूम वितानम बभार। समास जन्म अभिभावती जनाभिभावी तेन जनाभिभाविना अतिशयन महांती महियासी तेषा महियसाम महतो भावो महिमा तेन महिमना तनुना पात्यति इति तनुनुपात। वैयाकरण जनाभिभाविना जनधन अभिधन भूधरणिनी महियसाम महधन ईशुन महिमना मच्छता पृथ्वाधिपस्य इमनिज्वा इति इमनिच प्रत्यय तनुनुपात न भ्रांत इत्यादि सूत्र निपातांगिनो नलोपाभाव तिरस्कृत तिरस्धन क्रीधन कक्त त्रिगुणी कृतम द्विधन गुणधन चीवधन क्रीधन कता बभार भूधन लिधन टिप्लल। हिंदी अनुवाद। उस रावण के समस्त जनों का तिरस्कार करने वाले तथा अत्यंत महान तेज की महिमा से बार बार तिरस्कृत होकर अतीव कृश हुए अग्नि ने मानसिक दुखों से उत्पन्न आंसुओं के कारण दुगने बने हुए धूम समूह को धारण किया। परस्य मर्मा विधु मुझताम निजम विजिह ताव दोस जिहगामा भी मिभि तमिद माराधियु तुम सकर्ण कही कुलेरन भेजे भरिनाम भुजंगता। श्लोक संख्या 63 अन्वय। इद्धम तम अराधियुतुम परस्य मर्माविधम निजम द्विजि ताद दोषम उच्चताम फणिनाम अजिवेगामी भी सकर्णिके कुलै भुजंगताम न भेजे। समास मर्माणि विद्यतिति मर्माविधम तर्म मर्माविधम। वैयाकरण मर्माविधम मर्मन धन्व्या धन क्विप कहजिया इत्यादिनी संप्रसारणम नहि वृत्ते इत्यादिनी दीर्घ उच्चताम उच्चधन कर्तरी क्षत्रि इद्धम इंधि तन कर्तरी कक्त अराधियुतुम आ धन राध धन लिच धन तुमुन अज्वी गामी भी अज्वीह धन गम धन ताक्षले निनी भेजे भज धन लिच धन कर्मणी ता एश। हिंदी अनुवाद। उग्र स्वभाव वाले उस रावण की सेवा करने के लिए दूसरों का मर्म वेधन रूप अपनी द्विजीवता दोष को छोड़ने वाले तथा कुटिल न चलने वाले एवं कर्णयुक्त सर्पों के समूह ने पक्षांतर खलों ने भुजंगता को ग्रहण नहीं किया अर्थात छोड़ दिया। टिप्पणी रावण के भय से सर्प तथा चुगलखोरों ने अपने अपने दोषों को छोड़ दिया। द्विजीवता पहला दो अर्थ बीच से कटी हुई जीव रखना जैसा कि सर्पों की द्विजीवता प्रसिद्ध है। दूसरा चुगलखोरी आदि से भरी हुई दो प्रकार की बात कहना पिशुनता रूप दोष। सकर्ण कई पहला कर्णाभ्यम स वर्तते इति सकर्ण का अर्थात कान रखने वाले ऐसा कहा जाता है कि सर्पों के कान नहीं होते अतः उन्हें चक्षुषावसा नेत्र रूप कर्ण वाला या आँखों से सुनने वाला कहा जाता है। रावण के शासनकाल में सर्पों ने भी कानों को धारण किया जिससे वे अपने कर्तव्यों का भली प्रकार श्रवण करके उनका पालन कर सके। दूसरा कर्केन स वर्तन्ते इति सकर्णिके अर्थात नियामक सहित कर्णक जो प्रत्येक बात को सुनता है किंतु किसी से प्रभावित नहीं होता अर्थात चुगलखोरों के कहने में भी नहीं आता। चुगलखोरों ने रावण के नियंत्रण में चुगली करना छोड़ दिया क्योंकि वे नियामक युक्त थे अर्थात उसकी सेवा में थे अतः उनको चुगली करने का साहस नहीं होता था। तदीय मातंक घटा विघटते ही कट स्थल पोषित दान वारी भी गृहित दिक्कैर पुन निवर्तिति भिष्य निश्चर्याय यार्थाय मल्लम भी दिग्गजहि। श्लोक संख्या 64 अन्वय। तदीय मातंक घटा विघटी ते कट स्थल पोषित दानवा वारी भी गृहित दिक्कैर अपुन निवर्ति भी दिग्गजे चिराय यथार्थ्यम अलम भी। समास तस्यमि तदीया तदीयाश्चते मातंगा तदीय मातंगा तेषाम्या घटा ताभि विघटिता ते तदीय मातंग घटा विघटिते तत्पुरुष गृहीता दिशा यस्यते गृहीत दिक्कहि बहुब्रीहि न पुनर्निवर्तिति इति अपून निवर्तिते निवर्तिना ते अपून निवर्तिभि नहि तत्पुरुष वैयाकरण गृहीत दिक्कहि गृहीत धन दिश द्वेषादि विभाषा इति कप प्रत्यय अपून निवर्तिभि न पुनर्नि धनवृत्ति धनणिनी यथार्थ्यम यथार्थन आशादित्वान मत्वर्थे तत शय अलंबी लभेन नाथ कर्मणि लुंग विभाषा चिड़मूलो इति श्री कल्पनानुमागम। हिंदी अनुवाद। रावण के गज समूह से तांडित अतेव जिनके गढ़स्थल से मद जल दूर हो गया है तथा जिन्होंने अपनी दिशाओं को ग्रहण कर लिया है और जो पुनः नहीं लौटे अर्थात रावण के हाथियों के भय से पुनः नहीं लौटे उन दिग्गजों ने चीरकाल तक यथार्थता को प्राप्त किया। अभिक्षाण मुष्णैरपि तस्य सोषमणा सुरेन्द्र बंदी शव सीता निलर यथा स चंदनाभ्य कण कोमलैस्तथा वपुर जला दर्व पवनैर निवर्ववो। श्लोक संख्या 65। अन्वय सोमणा तस्य वपु अभिक्षणम उड़े अपि सुरेन्द्र बंदी शव सीता नीलै यथा निवर्ववो तथा स चंद नाभ कर कोमलै जलार्ध पावनै न निवर्ववो। समास चंदनेन सहितानि स चंदनानि तानि च तानि अभांसि स चंदनान भांसि तेषा कर्णा तैये कोमलाश्चतै स चंद नाभ कर्णा ते च ते कोमलाश्चतै स चंद नाभ कर्ण कोमलै जलार्धया पवना जलार्ध पवना ते जलार्ध पवनै। तत्पुरुष वैयाकरण निवर्ववो निर्धन वाधन लिट टिप्पणल। हिंदी अनुवाद। कामज्वर से संतप्त उस रावण का शरीर अत्यंत गर्म इंद्र की बंदरी बनाई गई सुंदरियों के निश्वास वायु से जितना आनंदित हुआ उतना चंदनयुक्त जलकणों से मृदु एवं मनोहर जल से सिक्त पंखे की वायु से आनंदित नहीं हुआ। टिप्पणी। इस श्लोक पर एक अन्य टीकाकार ने बड़ा अकांड तांडव किया है। विद्वान टीकाकार ने बंदी शब्द का अर्थ बांदिया किया है जो उनकी साहित्य शास्त्र के सूक्ष्म तत्वों की अनभिज्ञता को प्रकट करता है। विजयी राजा हारे हुए राजाधिकों की स्त्रियों को ही अपहरण करके अपने यहाँ रखा करते हैं न कि विजेतों की दासियों को, क्योंकि दूसरे राजाओं की दासियों को पकड़वा कर अपनी खरादी में रखना विजयी राजा की अत्यंत दुक्षता को प्रकट करता है। यदि कहें कि रावण कामी एवं विलासी है तो भी एक लोक विजयी राजा के लिए विजित राजाओं की स्त्रियों को ही अपने यहाँ रखना उचित हो सकता है, दासियों को नहीं। दूसरे नारद जी रावण को लोकातिशय पराक्रम को एवं स्वाभिमानता का कथन कर रहे हैं जो कि देवों की नारियों को बंदी बनाने से ही प्रकट होता है न कि बांदियों को, क्योंकि देवांगनाओं को बंदी बनाने का अर्थ देवों को पराजित करना एवं अत्यंत तुच्छ समझना। टीकाकार ने रावण के कामजर की संति में देवांगनाओं के गर्म श्वासों की उपयुक्तता इसलिए कही है कि वे गर्म है और गर्म वस्तु का उपचार ज्वर में लाभप्रद है न कि चंदनादि शीतल पदार्थों का उपचार। इस प्रकार तो उसके उनके मत में रावण के जेल में पड़े हुए पीड़ित पुरुषों के गर्म का स्वाद भी रावण के कामजर को शांत करने में समर्थ होंगी क्योंकि वे भी तो गर्म ही है। ऐसा सुंदर समाधान है। वास्तविक बात तो यह है कि कामजर की शांति तो कामनियों से अथवा उन स्त्रियों की चेष्टाओं या क्रियाओं से ही हो सकती है गर्म वस्तुओं से नहीं। इसलिए बंदी सतन से नीले बंदीभूत स्त्रियों के श्वासों से ऐसा कहा। तपेन वर्षा सरदा हिमागमो वसंत लक्ष्म्या शिशिरा समेत्य च प्रशून क्लीपितम दद्धता स दर्पवः पुरेष्य वातस्तव कुटुम्बिताम यजौ। श्लोक संख्या 66। अन्वय सदा प्रशून क्लुपितम दद्धता ऋत्वा वर्षा तपेन हिमागम सरदा शिशिरा वसंत लक्ष्म्या च समेत्य अस्य पुरे वास्तव्य कुटुम्बिताम यजौ। समास हिमस्य आगमन यस्मिन् सा हिमागम बहुब्री वसंतस लक्ष्मी वसंत लक्ष्मी तया वसंत लक्ष्म्या तत्पुरुष। व्याकृत दधता धा धन क्षत्रि अभस्तत्वानुभाव समेत समधन ईधन कत्वाल्यप ययो या धन लिट। हिंदी अनुवाद। सदा पुष्पश्री को धारण करते हुए छह ऋतु ग्रीष्म से वर्षा सरस से हेमंत और वसंत की शोभा से शिशिर ऋतु मिलकर इस रावण की नगरी में बसने वाले कुटुम्बियों के भाव नागरिकता को प्राप्त कर लिया अर्थात लंकापुरी के कुटुम्बनी बन गए। टिप्पणी। यहाँ श्री माघ ने दो दो ऋतुओं से मिलने का वर्णन किया है। इसमें से एक अर्थात कोमल कांति वाली ऋतु का वाचक शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है और तिथि प्रचंड ऋतु वाचक शब्द पुलिंग में प्रयोग किया गया है। इससे दाम्पत्य भाव प्रकट होता है। वर्षा शरद और वसंत से स्वभावतः पुष्प समृद्धि होती है। ये तीनों क्रमशः ग्रीष्म हेमंत और शिशिर से मिलती हैं तो ऋतुएं पुष्प समृद्धि से युक्त हो जाती हैं। अमानवम जातमजम कुलेमनो प्रभाविना भाविन मंतमात्मना मुमोच जानपि जानिकिम न या सदाभिमाने कधना ही मानिना। श्लोक संख्या 67 अन्वय अमानवम अजम मनो कुले जातम प्रभाविनम आत्मना अंतम भाविनम जाननम अपि या जानकिम न मुमोच ही मानिना सदा अभिमान के धना भवन्ति। समास मनोरयम मानवा न मानवा मानवा तम अमानवम नहि तत्पुरुष। वैयाकरणम जाननम ज्ञानन कर्त्री क्षत्री प्रभाविनम प्रभाधन इनि निर्वा जानकिम जनक धन अर्धन निच मुमोच मुझन निर्धन टिप्पणल। हिंदी अनुवाद मानव भिन्न तथा जन्म रहित मनु के कुलमत्पन्न तथा अत्यंत प्रभावशाली आपको अपना अवश्य ही मारने वाला जानते हुए जिस रावण ने सीता को नहीं छोड़ा क्योंकि मानी पुरुषों का अभिमान ही मुख्य धन होता है। समस्त यादव दाशरथी भवना भवानुमूम वनितापहारिणम पयोधिना बद्ध लज्जल विलम विलंघम लंकाम निकषा हनिष्यति। अन्वय भगवान दाशरथे भवन वनात्तात वनितापहारिणम अमूमम अबद्ध जलज्जा विलम पयोधि विलंघम लंका निकषा हनिष्यति अदः स्मरति किम्। समास वनिष्यातवंता वनांता तस्मात वनांता तत्पुरुष। व्याकरण दाशरथी दशरथ शब्दार्थ प्रत्यय अत ई इति ई प्रत्यय पयोधि परस्पुरवाद अधाधातो कर्मविधिकरणे च इति की प्रत्यय। हिंदी अनुवाद आपने दशरथ पुत्र होते हुए दंडक वन से पत्नी सीता का अपहरण करने वाले रावण को पुल बांधने से चंचल जल वाले तथा शुद्ध समुद्र को लांघकर लंका के पास में मारा था यह आप स्मरण करते हैं क्या। अथोव पतितिम छरदापरोपराम वाप्य सैलुषम इवेश भूमिकाम तिरोहितात्मा शिशुपाल संज्ञा प्रतीयते संप्रति सोप्यसा परै। श्लोक संख्या 69 अन्वय अत संप्रति छलान परा एषा सैलुषा भूमिकाम इव अपराम उपपतितम अवाप्य शिशुपाल संज्ञा तिरोहितात्मा स अपि परै असा प्रतीयते। समास छलयानम पर तत्पर छलना पर तत्पुरुष छलनाम पदम प्रधानवस्यु वस्तु अस्य स छलना पर बहुव्रीहि। व्याकरणम शिलुषस्य ऋषि प्रत्यम पुमानम शिलुषस्य शिलुषस्य धन आण प्रतीयते प्रतिधन ई कर्मणि लट्ट। हिंदी अनुवाद इसके बाद दूसरों को छलने में तत्पर व रूपांतर को धारण करने वाले नट के समान दूसरे जन्म को प्राप्त करके इस समय शिशुपाल नाम से अपने स्वरूप को छिपाए हुए वह रावण होते हुए भी अन्य जनों को दूसरा ही प्रतीत होता है। स बाल आशित वपुसा चतुर्भुजो मुखेन पुणेन निभस्त्री लोचना युवा कराक्रांत मही फृदिश्च करई संशयम संप्रति तेजसा रवि। श्लोक संख्या 70 अन्वय स बाल सन वपुसा चतुर्भुज आसी मुखेन पुरेन निभा त्रिलोचना संप्रति युवा स कराक्रांत मई भृता उच्च कई तेजसा असंशयम रवि। समास चत्वारा भुजा यस्य स चतुर्भुज बहुब्री पुरांचासो इंदु पुणेन्दु पुणेन्दा तुल्य पुणेन्दुभ्य त्रिलोचनाने अस्यासो त्रिलोचन बहुव्रीहि। वैयाकरण मई भृता मई दम भ्री धन क्विप आशित अम धन लंग टिप धन इट। हिंदी अनुवाद वह शिशुपाल बालक होते हुए भी अर्थात बचपन में शरीर से चार भुजा वाला था मुख से पूर्ण चंद्र के सदृश था तथा तीन नेत्र वाला था। इस समय युवा होने पर वह करग्रह द्वारा राजाओं को वशीभूत करने वाला अपने अत्यधिक तेज से सूर्य हो रहा है इसमें संदेह नहीं है। टिप्पणी यहाँ शिशुपाल को चतुर्भुज शब्द से विष्णु इंदु शब्द से चंद्रमा तीन शब्द से शिव तथा रवि शब्द से सूर्य के रूप में वंजित किया है इससे शिशुपाल का सर्व देव्यमयत्व प्रकट होता है। शिशुपाल की माता सातवती राजा कुंती भोज की पुत्री थी जो श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की चचेरी बहन थी। जब शिशुपाल उत्पन्न हुआ तो उसकी चार भुजाएं तथा तीन नेत्र थे उसे इस प्रकार का देखकर सातवती डरी और उसे कहीं दूर छोड़ना चाहा। उसी समय आकाशवाणी से यह सुनाई पड़ा कि यह एक बलवान राजा होगा इसको जिसकी गोद में रखने से तुरंत ही इसके दो हाथ और तीसरा नेत्र अदृश्य हो जाए वही इसको मारने वाला होगा। तब जो व्यक्ति शिशुपाल को देखने के लिए आता था सातवती उसी की गोद में उसे रख देती थी। एक बार जब श्री कृष्ण अपनी बुआ सातवती से मिलने आए तो सातवती ने उसकी गोद में शिशुपाल को रख दिया बस उसी समय उसकी दो भुजाएं और तीसरा नेत्र अदृश्य हो गए। अब सातवती ने समझ लिया कि उसकी मृत्यु इन्हीं के हाथों से होगी अतः उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि यह तुम्हारा फेरा भाई है अतः इसके अपराध को आप क्षमा करें। तब श्री कृष्ण सातवती के समक्ष शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करने की प्रतिज्ञा की।